மங்களம் பகவான வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் கொண்ட கொண்டாரியோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம். ஆத்மா ஞானம் ஸ்வயம் ஞானம் ஜானாதன்யக்கரோதி கிம் பரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோகோயம் வியவஹாரிணாம் அஜ்ஞானசிமிராந்தானாம் ஞானாஞ்சனசலாசயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஹ. நிமித்த உபாதான் கி சர்ச்சா ஹம் கர் ரஹே ஹே தோ நிமித்த ஔர் உபாதான் யே கிஸ்கே நாம் ஹே அசுபே ஹம் காரண கே तो कार्य में कारण होते हैं, जब जब कार्य होता है तब तक वहाँ कारण पूर्वक ही कार्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। जैसा कार्य कारण होगा वैसा कार्य होगा। हम कारण तो नहीं दे रहे सम्यक दर्शन का और कार्य चाहते हैं, है ना? तो जैसा कारण वैसा कार्य। तो कार्य के लिए अन्य शब्द भी हमने देखे थे, याद है आपको? बोले जाए हाँ, जैसा हालत अवस्था पर्याय कर्म बराबर परिणमन परिणाम, जैसे अलग अलग ये सारे शब्दों का एक ही अर्थ है, उसी को हम कार्य कहते हैं, उसी को पर्याय कहते हैं। तो जब हम उपादान और निमित्त, ये दो कारण है, किसके कारण है? कार्य के कारण है। तो उपादान की तरफ से अगर हम कार्य को कहेंगे तो कार्य को क्या कहेंगे वसंत भाई? तरफ से उपादान की अपेक्षा से कार्य का क्या नाम होगा? अब बोलो, उपादेय। और निमित्त तरफ, निमित्त की तरफ से क्या होगा? नैमित्तिक। बराबर, यानी इतना ख्याल में है ना कि जो कार्य हुआ उसी को उपादेय कहा और उसी को नैमित्तिक भी कहा। निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा और उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहा। तो ये तो हमने देखा था कि निमित्त तो हमने पर होता है, निमित्त पर होता है, वो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, फिर भी जब जब कार्य होता है तब तक कोई ना कोई वहाँ निमित्त होता है, उसकी उपस्थिति होती है। तो निमित्त कहते कब कहेंगे हम? जब कार्य होगा तब उस कार्य के अनुकूल परिणमने वाला अन्य कोई यहाँ पर द्रव्य है, उसको हम उपचार से कहते हैं कि ये इस कार्य का निमित्त है। निमित्त की परिभाषा याद है आपको? हाँ, देखो, जो स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसको हम निमित्त कहते हैं। उपादान के हमने कितने भेद देखे थे? क्षणिक उपादान, यानी उपादान के दो भेद, त्रिकाली उपादान जो द्रव्य या गुण होता है, और क्षणिक उपादान वो जो क्या है उसको हमने फिर उसके दो भेद देखे। क्षणिक उपादान कौन कौन से? उत्तर पूर्व नहीं, अनंतर उत्तर पर्याय, अकेले पर्याय नहीं लेना, पर्याय तो कार्य हुआ है। तो जिस समय जो पर्याय, जिस पर्याय की हम बात कर रहे हैं वह पर्याय उसी समय हो, ऐसी जो योग्यता है उस योग्यता को उपादान कहा। क्योंकि उस पर्याय को अगर हम उपादान करेंगे तो फिर कार्य को कार्य कहाँ हुआ? तो योग्यता है वह उपादान है और पर्याय हुई वह उसका कार्य। तो क्षणवर्ती में हमने, क्षणिक उपादान में हमने दो देखे, पूर्व पर्याय का व्यय पूर्व पर्याय कारण नहीं था। अब शॉर्ट में हमने अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कह दिया, परंतु असल में क्या मानना है? क्योंकि अगर पूर्व पर्याय को ही इसका कारण मानेंगे तो सम्यक्त्व के पहले कौन सी पर्याय थी? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के पर्याय को कारण मानना पड़ेगा और सम्यक्त्व को कार्य मानना पड़ेगा। ये ऐसा नियम है कि पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ये बंगड़ी है, ये बंगड़ी में से हार होगा कि सोने में से होगा? भाई प्रसन्न भाई, सोने में से, यानी वहाँ सोना रूप जो कायम है ना, बंगड़ी की अवस्था में भी सोना है और वो अवस्था मिट गई, सोना कायम रहा, फिर वो सोना में से ही वो हार हुआ। तो बंगड़ी में से हार हुआ ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कहते, बंगड़ी का व्यय होकर हार की उत्पत्ति, परंतु वहाँ कुछ था क्या? ऐसे ही हवा में से हुआ, आकाश में से कुछ उत्पन्न हुआ कि कुछ था भी, रॉ मटेरियल था ना कुछ? हाँ, तो वो जो सोना है वो पहले भी था और अब भी है। वैसे तो हमने 13 और 14 नंबर की पर्याय देखी थी ना सर, तो 13वें पर्याय के समय में भी द्रव्य ही 13वें पर्याय रूप था। अब ये 13वें पर्याय में थी, द्रव्य तो कायम रहा, और 14वीं पर्याय द्रव्य में से आई। अब यहाँ द्रव्य में से आई यहाँ बता रहे, जब पर्याय की भी स्वतंत्रता बतानी है तब कहेंगे पर्याय में से पर्याय है क्या, द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। जहाँ जो होगा विषय चल रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ भी ग्रहण करना। यानी यहाँ क्या कहते हैं, पर्याय में से पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु पहली पर्याय का अभाव होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, वो द्रव्य में से उत्पन्न होती है। अब वही पर्याय क्यों हुई? जैसे 13वें के बाद 14 ही क्यों हुई? क्योंकि उसकी ही वैसी योग्यता थी कि वो अपने स्व समय में उत्पन्न हो। तो ये योग्यता रूप जो धर्म है, योग्यता वाला जो क्षणिक उपादान है, वही नियामक है कार्य का। क्योंकि हमें तो ऐसी आकुलता होती है कि कार्य क्यों नहीं होता, तो प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक जो सारा ही प्रवाह एक के बाद एक पर्याय का प्रवाह जो है वो निश्चित है, हर एक द्रव्य का अपना। दो अलग अलग द्रव्यों के प्रवाह अलग अलग होंगे, किसी जीव को यहाँ पर सम्यक दर्शन हुआ, ये अभी मिथ्यात्व है यहाँ तक, और ये पहले सम्यक दर्शन हुआ वो अभी चल रहा है, और इसका यहाँ सम्यक दर्शन भी हुआ, मुनि भी हुआ, अरहंत भी हुआ, मोक्ष में चला गया, ये तो अभी चल रहा है, इस भोग के बाद ये मोक्ष जाएगा। जल्दी सम्यक दर्शन हुआ इसलिए जल्दी मोक्ष लिया, ऐसा कोई बात नहीं, उसके अपने अपने पर्यायों का क्रम निश्चित है। वैसे अपने प्रत्येक पर्याय का जो योग्यता रूप धर्म है वो अपने अपने द्रव्य में विद्यमान है, क्योंकि अरिहंत भगवान ने तो हमारे अनादि से अनंत काल की पर्याय एक साथ देखी है कि नहीं देखी, तो होने वाली देखी कि नहीं होने वाली देखी है? हाँ, ये ही होगी, अन्य नहीं होगी, ऐसा क्या? उस समय का सारा ही निश्चित है, उस पर्याय हुई वह पर्याय हुई, तो ये त्रिकाली उपादान तो उसमें है ही, क्षणिक उपादान भी है योग्यता रूप, और उस समय का निमित्त भी निश्चित है। क्योंकि निमित्त क्या होता है कि अन्य द्रव्य की अपनी पर्याय होती है, वो उसकी भी अन्य पर्याय जो है उसकी अपनी पर्याय वो भी निश्चित समय में होगी कि पहले आगे पीछे होगी। हमारे लिए विशिष्ट गुरु की वाणी निमित्त है, वो गुरु की वाणी है ना, वो भी पुद्गल है ना, वाणी जो है वो पुद्गल है, गुरु है वो जीव द्रव्य है, उनको समझाने का भाव आया, परंतु अनादि से वो जीव की जो जो पर्याय चल रही थी, अब इस समय समझो 8 बजे, तो 8 बजे विशिष्ट समय में उनको समझाने का भाव आया। ये पुद्गल परमाणु भी अनादि से अलग 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 वर्गणाओं में थे, अभी भाषा वर्गणा में थे, और अभी इसी समय वे भी शब्द रूप परिणमित थे। तो गुरु का भी परिणाम, वो पुद्गल का भी परिणाम, और हम भी अनादि से अन्य 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 अवस्था करते 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 अभी उस शिष्य की भूमिका में हमें भी समझने का भाव आया, तो हमारा भी उस टाइम तो वैसा परिणाम, और हमारे ज्ञान गुण में भी परिणाम होते 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 उस समय हम समझ गए। तो ये अलग अलग अनेक द्रव्यों में जो अपने अपने पर्याय स्व समय पे होती है, अभी हमें समझने में अनुकूल कौन लग रहा है इस सारों में, तो ये गुरु है उसकी वाणी वगैरह वगैरह, तो उन पर उसका निमित्त का आरोप आएगा। तो निमित्त ऐसा कोई फिक्स बैठा नहीं है, जैसे गुरु बैठे और चलो एक के बाद एक शिष्य जाके ज्ञान कर रहे, उनकी भी अपनी अपनी पर्याय चल रही, पुद्गल में वाणी रूप जो अभी पुद्गल वाणी रूप है वो तो पहले कोई अन्य वर्गना रूप था। पुद्गल की तो बहुत सारी वर्गना है, 23 वर्गना है। पुद्गल परमाणु भी हो सकता है, स्कंद भी हो सकता है, कोई भी। तो अभी परिणमित होकर वो भाषा रूप हो रहा है। तो इन सारे का समकाल है, तो समकाल देखकर उस पर निमित्त का आरोप आता है। जल्दी जा सकते हैं नहीं? उसमें क्या है, उसका पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ आप कहोगे उसको? हाँ, पुरुषार्थ यानी क्या करना पड़ेगा समय दर्शन के बाद? आत्मा में स्थिरता। तो हम कहेंगे तो पुरुषार्थ की ओर से ही बात करते हैं कि जो जीव आत्म स्थिरता का पुरुषार्थ करेगा उसकी पर्याय वैसी ही होगी, वैसी ही उत्पन्न होगी, कैसी? तो जल्दी मोक्ष में पहुंच जाएगी। बताती कुछ नहीं होती, वो फिक्स है, क्योंकि केवली ने वो भी जाना है कि ये जीव पुरुषार्थ करेगा और जल्द। ये भरत चक्रवर्ती है, तो भरत चक्रवर्ती तो इतने सालों तक तो ये सारा चक्रवर्ती पद भोगते रहे। लड़ाई के लिए गए तो 60,000 वर्षों को लड़ाई करते रहे। तो मुनि दीक्षा नहीं ली उन्होंने, परंतु जब मुनि दीक्षा ली तो कुछ अंतर मुहूर्तों में ही केवल ज्ञान प्राप्त, मोक्ष भी चले गए थोड़े अंतर मुहूर्तों में। क्या मुनि दीक्षा ली, छठा सातवा गुणस्थान, हजारों बार एकदम टपक श्रेणी चढ़ी, 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान पार करके मोक्ष चले गए। तो परंतु ये उनका सारा ही फिक्स था ना, केवली ने पहले जाना था। पूर्व में कुछ हजार कम समझो, यानी 13वां गुणस्थान उनका कितना था बड़ा? आयु तो उतनी भोगनी होगी उनकी, 13वें में है। देखिए क्या है, 13वें गुणस्थान के बाद अभी क्या पुरुषार्थ करना रहा? वो तो उनका अनंत पुरुषार्थ चल ही रहा है, उसने ऐसा ही नहीं, अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया और उसकी पर्याय चलती रहती है। अभी क्यों नहीं जाते, सिद्ध भगवान क्यों नहीं होते अभी? हाँ, तो उनको सिद्ध दशा हुई नहीं हुई क्या क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी तो संयोग रूप से यहाँ है, मनुष्य गति का भी उदय चल रहा है, मनुष्य आयु का भी उदय चल रहा है, वो भी निमित्त में। परंतु जीव की स्वयं की अपनी जो पर्याय योगत योग्यता है, उसकी अपनी पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय, शरीर की तरफ मत देखना, जीव की ही अभी कौन सी पर्याय चल रही है, वो मनुष्य पर्याय है। तो ये चलती रहेगी, जीव अपनी योग्यता से उसका अभाव करके सिद्ध पर्याय में, सिद्ध दिशा में चला जाएगा। नहीं, आयु में कुछ नहीं कर सकते, आयु का नहीं, अन्य कर्मों में स्थिति और अनुभव दसते रहते। एक एक पर्याय निश्चित है सर, सारी बात है। उसने ये 500 समवाय घटाए थे हमें। कोई भी कार्य होता है तो उसमें ये स्वभाव भी है, ये हमने त्रिकाली उपादान में देखा था। स्वभाव पांच के नाम याद है आपको? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, भवितव्य और निमित्त। तो हमने यहाँ तो निमित्त और उपादान लिए, ये सारे उपादान और ये निमित्त है। अब उपादान में स्वभाव तो त्रिकाली उपादान है, पुरुषार्थ ये पर्याय है ना, तब समय की योग्यता, ये विधि में आता है सारा। पूर्व पर्याय का अभाव करते 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 इसी को हम पुरुषार्थ में लेते, विधि पूर्व वाली। और जो होनहार यानी जिस समय होने वाली है, और भवितव्य ने ये इसको काल भी कहते, नियत भी कहते, यानी वो समय भी निश्चित है और कौन सी भवितव्य यानी होने योग्य वो पर्याय भी निश्चित है, ये क्षणिक उपादान में आता है। तो क्षणिक उपादान में ये लिए, देखिए जिसमें पांच समवाय तो ये आसान होगा, क्योंकि आप सुन लेना, हमने पांच समय में पांच कारण होते, कोई भी कार्य होता है तब ये पांचों ही कारण होते ही है। पहला हमने देखा था स्वभाव, पुरुषार्थ, सोनहार, या काल लब्धि कहो, या काल कहने से वो पर्याय की बात ख्याल आती, काल लब्धि भवितव्य कहो या होनहार कहो, यानी होने योग्य और निमित्त। अभी हम निमित्त उपादान की चर्चा करें, ये तो पांच समवाय कारण रूप कहे थे, अभी इसी पर हम निमित्त उपादान भी घटा सकते हैं। तो ये निमित्त तो निमित्त वाला अपना निमित्त कारण है और ये चारों ही उपादान में घटित होंगे। जैसे तो ये जो स्वभाव है वो तो त्रिकाली उपादान है, बराबर, क्योंकि स्वभाव होगा तो ही वहां कार्य प्रकट होगा, जीव द्रव्य में ही सम्य दर्शन की पर्याय होगी, उद्गल में नहीं होगी, ये स्वभाव। पुरुषार्थ में क्या है, पुरुषार्थ ने लंबा कुछ कायम है, विधि है ना, विशिष्ट विधि, पहले तत्व निर्णय किया, फिर आत्म सम्मुख हुआ, कर्म लब्धि के परिणाम हुए, फिर आत्मानुभव हुआ यानी सम्य दर्शन हुआ, तो ये सारे एक एक पर्याय पूर्व पूर्व पर्याय का अभाव करते करते उत्तर उत्तर पर्याय प्रकटती गई, लंबा सिलसिला चला, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। उसी समय पर पुरुषार्थ घटाना हो तो भी वो भवितव्य में आ सकते हैं, परंतु अभी हम ये पुरुषार्थ है एक एक पर्याय के बाद एक एक पर्याय जो हुई उसको हमने पुरुषार्थ कहा, तो ये विधि हुई यानी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और ये काल लब्धि यानी जिस समय हुआ और भवितव्य ने जो होने योग्य है वो हुआ, तो ये सारा हम त्रिकाली क्षणिक उपादान में उसको बता सकते हैं। ये सारे ये स्वभाव हुआ त्रिकाली उपादान, पुरुषार्थ काल लब्धि और भवितव्य है वो हुआ क्षणिक उपादान। तो हम कहते हैं ना जब तक कार्य होगा तो त्रिकाली उपादान क्षणिक उपादान ये उपादान की तरफ और निमित्त नाम का वहां उपस्थिति रहेगी। हम आज तक क्या समझते थे, देखो ये उपादान इसलिए हमको क्या लगता था अकेला त्रिकाली उपादान वो उपादान, तो हमने पहले ही क्या सोचा था, अरे त्रिकाली उपादान तो है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा, तो हमारी दृष्टि कहाँ चली गई थी, निमित्त के ऊपर, अरे जब निमित्त आएगा तो ही कार्य होगा, परंतु निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं, वह द्रव्य भी अपने में परिणमते 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 उसकी उस समय जो पर्याय हुई थी वो पर्याय तो उसके अपने कारण से होगी, उसका भी अपने वो पर्यायगत योग्यता से उसका अपना कार्य चल रहा है। गुरु में भी जो समझाने का भाव हुआ वो उसके अपने योग्यता पर्याय की योग्यता से हुआ, और उस समय जो शिष्य को सुनने का भाव हुआ वो उसके अपने कारण हुआ, तब हम इसको निमित्त कह सकते हैं। निमित्त इस पर्याय रूप से नहीं परंतु वो अपने पर्याय रूप से परिणाम रहा, फिर भी उसकी पर्याय इतनी अनुकूल दिखती है इसलिए हमने उस पर आरोप किया कि यह भी कारण है, परंतु द्रव्य में अपनी पर्याय स्वयं करे ऐसी उसकी स्वभावगत योग्यता है पात्रता, क्योंकि द्रव्य अनादि से है और अनादि से ही हर समय कुछ न कुछ पर्याय 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 उसकी चल रही है, तो कौन सी पर्याय हो रही है, उसके अपने में ही जो योग्यता है वही पर्याय होगी, अन्य नहीं होगी, दूसरा कोई आए दूसरा इच्छा करे इसलिए इसके पर्याय बदल जाए ऐसा नहीं होता। हाँ, उसकी तत् समय की योग्यता यही कार्य का नियामक है। हमें आज तक लगता था निमित्त आया तभी कार्य होगा, क्योंकि उपादान तो है अपने पास, निमित्त आएगा तब हमारा कार्य हो जाएगा, परंतु सच्चा नियामक कौन है, एक क्षणिक उपादान तत् समय की योग्यता, तो तत् समय की योग्यता से ही कार्य होगा, और जब ऐसी हो योग्यता होगी तो वहां अनुकूल निमित्त होगा ही, निमित्त की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, उपादान से ही तत्समय की योग्यता से कार्य होता है, उस समय पूर्व पर्याय का व्यय भी होता है और इस समय की योग्यता के कारण से ये पर्याय कार्य होता है। तो हम आज तक निमित्त की ओर देखते थे, कह रहे कोई निमित्त नहीं निमित्त नहीं इसलिए हमारा कार्य रुका हुआ है, तो अपनी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है, या कोई अपने को पर का निमित्त मानता है, अरे मैं इसका कार्य करता हूँ, देखो मैंने किया तो इसका हुआ, मैंने किया तो इसका हुआ, मैंने इतना कार्य किया, बच्चों को बड़ा किया, उसको खिलाया पिलाया तो ये बड़ा हुआ, मैंने उसको धंधे पे लगा, तो ये हम या तो स्वयं निमित्त बन जाते हैं और अहंकार करते पर की कर्तृत्व तो बुद्धि उसका पोषण करते, या हमारा कार्य कोई अन्य कर दे ऐसी दूसरी निमित्त की ओर ताकते रहते, तो ये अपनी खोटी जो बुद्धि है मान्यता में सब चल रहा है। वस्तु स्वरूप में ऐसा है ही नहीं है, अनादि से ही हमने किसी का कार्य किया नहीं ना अन्य किसी ने हमारा कार्य किया, हमारी एक एक पड़े अपने स्वयं के कारण से होती आई है। यानी मिथ्या स्वरूप जो परिणाम अनादि से है वो भी स्वतंत्रता से जीव करता है, जब वो सम्यक स्वरूप परिणमता है वो भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है। किसी ने कर्म कर्म बहुत है आड़े आए है इसलिए हमारा कार्य रुका है, इसे कोई निमित्त से होता ही नहीं, ये मान्यता में बराबर लेना, इसका निर्णय कर लेना, अपने दिमाग से उसका निर्णय करेंगे तो ही वो कार्यकारी, क्योंकि सारा लौकिक तो व्यवहार तो निमित्त की भाषा में ही चलता है, भाषा भले वो निमित्त की परंतु उसके पीछे की मान्यता सही होनी चाहिए, क्योंकि मान्यता सही होने पर भी ऐसे कहेंगे कि आपने सिखाया तो हमको हुआ, जब हमने ग्रंथ इतने पढ़े हमारे ऊपर उपकार है कुमकुंडाचार्य के, हम तो उनको स्मरण करते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो गौतमो गुण मंगलम कुंड कुंडारी, कुंड कुंड को भी हम रोज याद करते, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखा होता तो हमें ये मार्ग कहाँ से मिलता। तो जो व्यवहार होता है कथनी होती है वो तो निमित्त की भाषा में ही होती है, परंतु अभिप्राय सही होना चाहिए। देखो कल हमने जो द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति की बात की थी वो थोड़ा अधूरा फिर से दोबारा ले लेंगे, यहाँ जो बीच में एक बोल्ड लेटर में दोहा लिखा था ना उसके नीचे से फिर पढ़ेंगे, पहले पेज अगला पेज पहला ले। हाँ, दोहा चाहिए, दोहा से ही चालू करते। उपादान निज शक्ति है जीव को मूल स्वभाव, अभी हमने उपादान को क्या कहा था, स्वभाव है ना, त्रिकाली उपादान या उपादान को, यानी उपादान भी है और त्रिकाली उपादान भी, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो कायम भी रहे और हर समय परिणमित भी हो, कायम रहने के लिए भी उसके अन्य किसी द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, और बदलने के लिए भी उसको किसी अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में ही परिपूर्ण है, स्वयं में ही कैपेबल है कि अपना कार्य खुद करे। यानी हर द्रव्य अपने आप में, हमें किसने बनाया, हम जीव द्रव्य है, हमें किसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, तो द्रव्य जो किसी ने नहीं बनाया तो अपनी इस समय की पर्याय को किसने बनाया, उसको भी किसी ने नहीं बनाया, वो भी अपनी स्वयं की योग्यता से स्वयं से है, द्रव्य में ही परिणमन स्वभाव जो है वो द्रव्य का स्वभाव है ना, परिणमना, हर समय परिणमन करना परिणमन करना परिणमन करना परिणमन करना, ये द्रव्य का स्वभाव है। थोड़ा बिगड़ जाता है कभी कभी, घड़ी चल रही है बीच में बंद होती है ना बैटरी खलास हुई, तो ऐसा द्रव्य जो परिणमन कर रहा है वो बीच में रुक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो उसका स्वभाव है। ये हार्ट भी, हार्ट बीटिंग भी रुक जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, वो द्रव्य का फेल नहीं होता कभी, उसका परिणमन अनादि से अनंत काल तक चलता रहेगा, एक समय की भी उसमें रुकावट नहीं होगी होगी। देखो उपादान जो है वो क्या है, द्रव्य की निज शक्ति, निज शक्ति है कायम रहना और परिणमन करना, ये जो द्रव्य की निज शक्ति, यहाँ जीव की लिखा है, जीव की नहीं जीव की, जीव की कहो या अन्य द्रव्य की कहो, हम एक द्रव्य पर यहाँ घटा क्योंकि हम जीव है और हमें अपनी बात सीखनी है, इसलिए यहाँ जीव की लिखा। जीव को मूल स्वभाव को यानी का, वो जीव का मूल स्वभाव है निमित्त परयोग सही, परयोग यानी पर का वहाँ संयोग है, तो निमित्त अन्य कोई द्रव्य है यानी अन्य किसी द्रव्य का वहाँ संयोग है, उसकी उपस्थिति है, उसकी नजदीक है, वो अन्य कोई द्रव्य सामने है उपस्थित जब यहाँ कार्य हो रहा है, बनियो अनादि बनाओ ऐसे ही अनादि से हो रहा है, अनादि से ही कार्य जो हो रहा है वो उपादान से हो रहा है, निज शक्ति से हो रहा है और वहाँ स्वयं और सामने निमित्त हाजिर रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है और वो मात्र संयोग है, पर द्रव्य साफ साफ है, वो द्रव्य में इस द्रव्य में कुछ नहीं करता। कोई भी दो द्रव्य एक दूसरे का नहीं करते, अपना अपना करते। अपना अपना करते हुए उस पर आरोप आता है कि ये हमें सहकारी लगता है, हमारे कार्य में इसने सहयोग किया जैसा दिखता है, करता नहीं वो, तो हमने उसको निमित्त कर दिया। प्रत्येक की अनंत अनंत द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे कि नहीं, कि कोई निमित्त रूप हो रहा है और कोई उपादान रूप हो रहा है। पाली पाली ये अनंत द्रव्य है, एक साथ सारे परिणमित हो रहे हैं, है, हम छह दे लेंगे तो छह ही द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। तो छह द्रव्य में उपादान शक्ति है कि नहीं, हाँ, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, यानी वो सारे अपने अपने उपादान की योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। अब जिसका परिणमन हमारे अनुकूल है उसको हमने निमित्त कह दिया। आकाश द्रव्य अपने में परिणमता है। अब हमने ठहरने के लिए हमारे लिए कौन निमित्त दिखा, हमको अनुकूल कौन दिखा, आकाश दिखा, तो हमने आकाश को निमित्त कह दिया। अवगाहना, हम चल रहे हैं तो चलते चलते छह द्रव्यों में से कौन अनुकूल दिखा हमको, धर्म द्रव्य, तो हमने कहा धर्म द्रव्य हमारे लिए निमित्त चलने। अभी चलते चलते हमने चलो थोड़ा रुक जाएंगे, पहले मिली ना रस्ते, तो हमने कहा चलो रुक जाएंगे, तो रुकने में कौन निमित्त हुआ, अधर्म द्रव्य, तो हमने अधर्म द्रव्य को कहा ये हमारा निमित्त है। सारे ही अपने में थे ही ना, जब हमने अधर्म को निमित्त कहा तो कहा तब तो आकाश द्रव्य भी था, काल द्रव्य भी था, धर्म भी था, उद्गल भी था, हमने निमित्त किसको कहा, अधर्म द्रव्य। क्यों, क्योंकि हमारा जो रुकने रूप कार्य हुआ उसमें अनुकूल कौन दिखा उस वक्त, अधर्म द्रव्य। उस समय धर्म द्रव्य परिणमन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, सारे ही द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे थे, परंतु हमारे कार्य में कौन अनुकूल दिखा उसको हमने निमित्त कह दिया। वैसे हर समय हमारा कुछ न कुछ परिणमन भी चल रहा है, वर्तते हैं ना, एक एक पर्याय रूप, एक एक पर्याय रूप हो रहे, तो हमने सभी द्रव्यों की ओर देखा तो काल में भी हम देखा तो एक एक समय वाला परिणमन चल रहा था, तो हमने काल द्रव्य को कहा यह हमारा निमित्त है परिणमन। छह द्रव्य हम अपनी अपेक्षा से हमने उसको निमित्त रूप से उसकी व्याख्या बनाई। धर्म द्रव्य कहते किसे है, कि जीव ने व्याख्या बनाई ना, तो धर्म द्रव्य में तो आनंद गुण है, तो हमने अपनी अपेक्षा से उसकी व्याख्या क्या बनाई, परिभाषा क्या बनाई, कि जो जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त है, स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को गमन में जो निमित्त हो उसको धर्म द्रव्य कहते हैं, क्योंकि अपनी ओर से उसकी पहचान देनी है ना। हम अपने घर के जो और मेंबर्स है उसको कैसे कहते, ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे माता जी है, अपनी ओर से उनकी पहचान है ना, तो उनकी अपनी भी कुछ पहचान है कि नहीं है, हाँ वो है ना, स्वयं एक व्यक्ति है, परंतु हम अपनी ओर से उनकी पहचान दे रहे हैं कि हमारे भाई बहन माता जो कोई है। तो ऐसे ही जीव ने इन सारे द्रव्यों को डिस्क्राइब किया है। तो आकाश किसे कहते हैं, आकाश में तो अनंत गुण है और वो अपने से मत है, परंतु ये हमें ठहरने के लिए निमित्तभूत होता है, इसलिए हमारी ओर से हमें उसकी पहचान है। तो प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी उपादान शक्ति है। अरे तो ये लिखा उपादान निज शक्ति है जेको मूल स्वभाव, ये प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, मूल स्वभाव है निमित्त पर योगते, और निमित्त ये परद्रव्य की जो पर्याय अपने को अनुकूल लगे वो निमित्त कहलाती है। यानी सारे ही द्रव्य अपने अपने में अपनी योग्यता से परिणमन रहे, हमारे कार्य में जो अनुकूल दिखता है उसको हम निमित्त कहते, निमित्त अपने लिए नहीं परिणमन कर रहा, आकाश द्रव्य हमारे लिए नहीं परिणमन कर रहा, धर्म द्रव्य हमारे लिए नहीं परिणमन कर रहा, वो तो है बस, वो अपने अपने में परिणमन करता है। जब हम स्वयं गमन करे तो उसको अनुकूल होने का आरोप आए, जैसे रेल के वो रूल्स है ना, नीचे के रेल पटरी वो तो पड़ी है, तो वो रेल को गमन में कब निमित्त होगी, रेल चले तब, गाड़ी चले तब उसको निमित्त कहेंगे, और गाड़ी नहीं चले तो नहीं कहेंगे, और गाड़ी रुके तो सिग्नल को निमित्त कहेंगे, अरे वो लाल वहां सिग्नल था इसलिए आगे नहीं ले। तो जो स्वयं कार्य करे वैसे उसके सामने वाले चीज को निमित्त कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, हाँ दीपाली, ये दोहा समझ में आया। अब इसके बाद जो हमने शक्ति की बात की थी, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति, वो बहन जी कहती जरा थोड़ा सा उसे ले लेना, लाइब्रेरी ने कहा था, तो इसको फिर दोहराते हैं। देखो शक्ति दो प्रकार की होती है, ये दोहा की जो है ना उसके नीचे से शुरू करें, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति, ये दोनों ही क्या है, उपादान है। बराबर, द्रव्य शक्ति ने वो त्रिकाली उपादान जो पड़ा है द्रव्य में, वो द्रव्य शक्ति, और पर्याय शक्ति ने उस समय की जो योग्यता है, क्षणिकता, उस समय जो पर्याय होने की योग्यता पड़ी है वो पर्याय शक्ति। तो द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति ये दो शक्ति, इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है, यानी कार्य 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 यानी कार्य करने वाली। अभी जो इस समय कार्य हुआ, जीव तो बैठा था, अभी चलने रूप कार्य किया, तो जीव में तो चलने रूप यानी जो स्वभाव तो था उसका, गमन कर सके ऐसा स्वभाव था, परंतु अभी तक गमन क्यों नहीं किया, अभी तक बैठा क्यों रहा। तो कहते पर्याय की योग्यता कौन सी, पर्याय शक्ति, गमन रूप परिणमन करने की जो योग्यता है वो पर्याय शक्ति, गमन की योग्यता अनादि से पड़ी है वो द्रव्य शक्ति, इसी समय गमन होना ये पर्याय शक्ति। तो पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है उसी से पर्याय प्रकट होती है, उसी से कार्य होता है, इसलिए उसको कार्यकारी कहा। नहीं, द्रव्य शक्ति तो अनादि से है, द्रव्य शक्ति को परे वो तो स्वभाव है ना, ये उत्पादन जो है स्वभाव जो है, स्वभाव में कारण नहीं होता, कारण किसमें होता है, कार्य में कारण होता है। पर्याय शक्ति स्वयं कारण है, किसकी, पर्याय क्या है, जो स्वभाव है, जो त्रिकाली उपादान हमने कहा, ये तो स्वयं कारण है। हाँ, द्रव्य शक्ति त्रिकाली, वो द्रव्य शक्ति जैसे हमारी ज्ञान स्वभाव है, सोने से बने, तो सोना क्या हुआ, त्रिकाली उपादान, उसमें कौन कौन सी योग्यता है, बंगड़ी भी बन सकती है, हार भी बन सकता है, रिंग भी बन सकती है, तो अभी बंगड़ी ही क्यों बनी, तो इस समय बंगड़ी बनने की ही पर्याय की ये पर्याय शक्ति, उस समय वही पर्याय हो ऐसी जो पर्याय शक्ति है उससे वो कार्य हुआ, तो अकेली बंगड़ी किसमें बनेगी, तो वहां द्रव्य शक्ति, द्रव्य को भी लेना है ना साथ, अकेले पर्याय अधर से कहीं होगी नहीं, तो द्रव्य की ही वो पर्याय रूप होने की योग्यता है। पर्याय 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 क्या है, कि द्रव्य का वर्तमान है, द्रव्य की प्रकट अवस्था, उसी को पर्याय कहते हैं। द्रव्य किसी न किसी अवस्था में हमेशा विद्यमान रहेगा, ऐसा नहीं कि सोना सोना है बस है, अरे किस रूप है, इसकी तरह के कुंडल है क्या, हार है क्या, क्या है उसका, खड़ा है नहीं बस है, तो है कहने से होगा कभी, तो सोना किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी फॉर्म में हमेशा विद्यमान रहेगा, उस फॉर्म को, उस अवस्था को हम पर्याय कहते हैं। जैसे द्रव्य शक्ति हमारे में ज्ञान शक्ति है, वो किसी ने निर्माण नहीं किया, अनादि से अपने में जानना जाने यानी जानने रूप जो शक्ति है वो पड़ी है अंदर, तो अभी कार्य के अनुसार होगा कि इस समय विशिष्ट चीज को जानना, जैसे सामने ये चौक है और इस समय हम चौक को जान रहे हैं, तो अब तक तो हम क्या मानते थे, ये सामने है इसलिए हमने जाना, ये तो निमित्त से कार्य होगा ऐसा मानना है, परंतु अब हमको क्या पता चला, निमित्त से नहीं होता, तो किससे होता है, उपादान से होता है, उपादान हमारे द्रव्य में ही जानने की योग्यता, यानी हमारा स्वभाव ही है जानना, इसलिए जानना हुआ। तो आपका स्वभाव था तो इतने टाइम क्यों नहीं जाना, जब चौक सामने आया तभी तो जाना ना, तो हम कहते नहीं ये उसका नियामक नहीं, तो कौन सा नियामक है, इस समय चौक रूप जो ज्ञान की पर्याय हुई, ज्ञान की पर्याय जो चौक को जानने रूप हुई, वो हमारी स्वयं की पर्याय शक्ति, हमारी विशिष्ट समय में विशिष्ट जानने की पर्याय हो ऐसी हमारी स्वयं की, द्रव्य की शक्ति तो जानना जानना थी, और पर्याय की समय शक्ति विशिष्ट समय में विशिष्ट ज्ञेय को जानना, ये पर्याय शक्ति। तो विशिष्ट समय में, अभी इस समय में ये चौक को जानने रूप हमारी पर्याय शक्ति की, उस शक्ति को कारण कहा, और ये चौक को जाना, चौक को जाना ये तो हम उस पर आरोप करके कथन करते, हमने क्या जाना, हमने तो अपनी ज्ञान पर्याय ही विशिष्ट चीज को जानती हुई प्रकट होती, दो को जाने या पर को जाने। अभी हमारी ज्ञान पर्याय चौक को जानने रूप परिणमित हुई। क्यों हुई? चौक था इसलिए। हाँ जय जय बराबर। ज्ञान की पर्याय की अपनी योग्यता से वो परिणमित हुआ। तो आज तक हम ऐसे ही समझते थे कि सामने गुरु की वाणी थी इसलिए हमको ज्ञान हुआ, परंतु ज्ञान की पर्याय की उस समय उस रूप परिणमित होने की योग्यता है इसलिए वो ज्ञान वैसा परिणमित हुआ है। केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की योग्यता उस ज्ञान में पड़ी है। ये द्रव्य शक्ति तो कहे कब की थी? अनादि से। अनादि से द्रव्य में केवल ज्ञान रूप होने की शक्ति पड़ी है। सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा है उसका, तो स्वभाव अनादि से ही सर्वज्ञ स्वभाव ही है, परंतु वो 13वें गुणस्थान में इसकी केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो ये पर्याय शक्ति कब थी? यानी वो पर्याय शक्ति कभी कहलाई? 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान रूप परिणमने की पर्याय शक्ति। तो ऐसी पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है वही कार्यकारी है, यानी वही केवल ज्ञान रूप पर्याय को प्रकट करे। यानी केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ कार्य, वो केवल ज्ञान रूप प्रकट होने की जो योग्यता थी पर्याय में, और वो पर्याय थी वो द्रव्य शक्ति के साथ, तो जो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति है उसी से कार्य होता है। आया आज कुछ हमारे, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव तो पड़ा है, हमारे में तो अनंत गुण है, तो ये अनंत स्वभावात्मक तो सारा का सारा स्वभाव पड़ा है, परंतु सारे गुण अभी ऐसे कम ज्यादा क्यों परिणमित हो रहे हैं? तो अभी हमारी पर्याय शक्ति ऐसी, तो प्रत्येक समय में कौन सी पर्याय शक्ति है वो सारा फिक्स है अपना, ना जीते अनंत काल तक का, और उसकी योग्यता अनुरूप वैसे 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 पर्याय कर सकते। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं चलो हम आराम करेंगे, स्वच्छंदता पोषण करेंगे, ये सुनकर तो हमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जीव की रुचि कहाँ पड़ी। ये सोचकर पुरुषार्थ अधिक जागरूक होता है कि चलो अपने होने वाला तो होगा, तो हम क्यों इसके पीछे पड़े। तो उससे पता चलता है कि इसके अभी आगे वाली आने वाली पर्याय कौन सी होगी, कौन से मार्ग पर चलने वाला है। देखो इसको जब जानते हैं तो निश्चिंतता आती है, आकुलता कम हो जाती है। समझ आता ना? तो अभी वर्तमान पर्याय की तरफ देख कर हमको आकुलता करने की जरूरत नहीं। पर्याय की तरफ लक्ष्य हटाना, पहले तो हमने निमित्त की तरफ देखते थे, अभी निमित्त तरफ की लक्ष्य हटा दिया हमने। तो पर्याय की योग्यता वो तो अपना विषय है नहीं, पर्याय की योग्यता। तो ये पर्याय किसमें से प्रकट होती है? तो द्रव्य में से प्रकट होती है। द्रव्य में ही अनादि अनंत सारी पर्याय की योग्यता पड़ी है, वही तो पूरा अखंड द्रव्य हमारा। तो जब हम द्रव्य की ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं, अपना स्वीकार लेने, उसमें पर्याय भेद को नहीं गले, उसको सारे को गौण कर देना। तो ये सामान्य ऐसा जो एक रूप अपना ज्ञायक स्वभाव है उसको मुख्य करके हम उसको जानते रहेंगे, तो ये जो आगामी आने वाली पर्याय है वो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये सारे ऐसे ऊपर अपने आप आएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो अपने में जानते रहे ना उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और वहां ज्ञान कैसे जाएगा? खींच कर लाना पड़ेगा उसको, अंदर ले जाना। अंदर बाहर क्या है? वहां हम स्वयं आत्मा है, अब आत्मा के अंदर और कौन सा आत्मा है कि जिसको जानना, उसी को अंदर ले जाना, अंदर लेना। ये अंदर बाहर कुछ नहीं होता। हमने अपने को शरीर रूप समझा है, अपने को आत्मा रूप समझेंगे, अपने को ज्ञान रूप अनुभव करेंगे और उस रूप ही हम अपने को जानते रहेंगे, तो हो गया काम। यही तो पुरुषार्थ है। यानी ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी निर्णय में कहीं कचास पड़ी। जो तत्व का निर्णय है, जो क्रमबद्ध पर्याय में हमने उसमें बहुत चर्चा की, ये निमित्त उपादान भी बहुत बहुत महत्व का विषय है, क्योंकि हमारी जो निमित्ताधीन दृष्टि है आज तक हम पर की ओर ही ताकते रहे कि किसी अन्य से मेरा कार्य होगा, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर देगा, ऐसी जो मान्यता पड़ी है उसके मूल में ये सारा। हम कहने के लिए तो कह देते एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ये निमित्त की दृष्टि पड़ी रहेगी। तो इसका जब निर्णय होगा हमारा तभी तो दृष्टि वहां से हटेगी। तब तो बुद्धि छूट जाएगा। इसीलिए सारा ये क्यों इतना निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय और निश्चय व्यवहार, इसको बहुत स्वामी जी भी बार बार कहते थे इसका बराबर सही निर्णय करना ही चाहिए। तो निर्णय होता है तो सहज ही हो, क्योंकि फिर दूसरे में रुचि रहती ही नहीं है, तो उपयोग जहाँ जाएगा वहां जिसकी जहाँ उसकी रुचि होगी, रुचि अनुयायी वीर्य, तो पुरुषार्थ वही का होगा उसी तरफ का कि जहाँ रुचि पड़े। इसलिए आत्मरुचि स्वरुचि कोई सम्यक का छड़ा रहे, पर द्रव्य भिन्न आप की आपों में रुचि सम्यक गला, यानी अन्य द्रव्य से अपने में रुचि होना, परंतु अपने में रुचि ने हमने अपने को तो शरीर रूप माना है और हमारी तो अपने में रुचि है ही, वो अपनी रुचि नहीं कहलाए। शरीर से भिन्न अपना क्या स्वरूप है उसको जानकर उसकी रुचि होना, ये सम्यक है। हालांकि हम अपने को हाँ मैं उज्ज्वला ऐसा समझ कर बैठी हूँ, यानी ये सारे शरीर के परमाणु, ये जो कोई कर्म के उदय रूप जो फल मिल रहे अभी, ये सारे को मिलकर हमने मैं मान लिया, अभी इसमें तो रुचि है ही हर एक जीव की। हर एक जीव जो संसारी अभी रूल रहा है उसकी तो ये पर्याय बुद्धि, यानी जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, एक मैं जीव द्रव्य और ये सारे अनंतानंत खुदगल परमाणु, इनकी मिली जुली जो पर्याय है, अनेक द्रव्यों की पर्याय, उसको हमने मैं माना है। अब जब तक इसको मैं माना है और उसमें रुचि है, तब तक तो ये नए नए कर्म भी मिलते रहेंगे, शरीर भी मिलता रहेगा और ये चल रहा है अनादि से, तो यही तो हो रहा है। ये मैं जिसको माना था वो मैं सचमुच हूँ क्या नहीं है, इसका कभी विचार नहीं, कि इस मैं में ये जो मैं माना था पूरे इसमें, तो इसमें मैं कितना हूँ और ये पर क्या क्या है, इसका निर्णय क्या करना है, किसी को हटाना नहीं किसी को जुटाना, वो है सब अपने अपने जगह में, उसमें मैं कौन हूँ इसका लक्षण के द्वारा उसकी पहचान कर। तो अपना यहाँ कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है कि सारा शरीर ही शरीर दिख रहा है दीपाली, अपना स्वयं का भी कुछ लक्षण यहाँ ख्याल में आ रहा है कि सारा शरीर ही दिख रहा है, यहीं पर पड़ा है सारे द्रव्य, तो उसमें बच्चे को लेने जाते हैं तो इतना सारा सारे बच्चे है वहाँ, अपना बच्चा उसमें पहचानते हो कि नहीं पहचानते, कैसे पहचानते, इसका लक्षण पता है ना भैया ऐसा दिखने वाला, हाँ ये मेरा बच्चा, तभी ये यहाँ सारा ये पड़े है अनेक द्रव्य, उसमें अपनी कोई पहचान नजर आती है कि नहीं जयबे, बराबर जानने का स्वभाव, क्योंकि आँख कान वगैरह ये तो जानते नहीं है, क्योंकि अभी ये जीव यहाँ से गमन कर जाएगा और शरीर पड़ा रहेगा, तो हम इसको क्या कहें, ये बॉडी है, इसको आँख नाक कान सब दिख रहे हैं ना, तो यहाँ डॉक्टर ने आके ऐसे ऐसे करके देखा, इधर हार्ट बीटिंग नहीं हो रहा है, इधर कोई सेंसेशन है नहीं सेंसेशन, चलो मुर्दा घोषित कर दिया, तो कुछ था ना जानने वाला जो चला गया, वो अभी है कि नहीं है, वही तो मैं हूँ, जहाँ ये जानने रूप जो कार्य कर रहा है वही तो आत्मा है, क्योंकि लक्षण द्वारा ही उसको पकड़ना है, प्रेम कहाँ से कहाँ ले लेंगे, द्रव्य शक्ति से पर्याय शक्ति की तरफ, देखो शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति, इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है, पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है, इसका अर्थ ख्याल में आया गया, द्रव्य शक्ति नित्य होती है, द्रव्य शक्ति तो अनादि अनंत है और पर्याय शक्ति अनित्य, एक एक पर्याय के लिए वो उसकी उसकी पर्याय शक्ति, इसलिए उसको क्षणिक का अनित्य का, नित्य शक्ति के आधार पर कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य के नित्यत्व का प्रसंग आता है, अकेले द्रव्य शक्ति से ही कार्य होगा ऐसे अगर हम कहेंगे तो द्रव्य में तो सर्वज्ञ शक्ति है अभी हमारी, तो सर्वज्ञत्व का कार्य क्यों नहीं अभी प्रकट है, अभी सर्वज्ञता क्यों नहीं है पर्याय, यदि अकेले द्रव्य शक्ति को ही हम कारण मानेंगे, द्रव्य शक्ति से ही कारण कार्य होता है इतना ही मानेंगे, पर्याय शक्ति को मानेंगे ही नहीं, हाँ नहीं ऐसा अगर मान कोई मानेगा कि नहीं नहीं द्रव्य शक्ति बस, तो कार्य हमेशा होता रहना चाहिए, हमारे में केवल ज्ञान शक्ति है द्रव्य में और उसी से अकेले कार्य होता है ऐसे अगर मानेंगे, तो हर समय केवल ज्ञान होना चाहिए अनादि से अनंत काल तक, परंतु वैसे तो होता नहीं है, अभी हमारी सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय चल रही है, अल्प ज्ञान की पर्याय चल रही है, और द्रव्य शक्ति में तो सर्वज्ञ तो पड़ा है, केवल ज्ञान शक्ति पड़ी है, तो अकेले द्रव्य शक्ति से तो काम नहीं होता है, तो किससे होता है, तो द्रव्य शक्ति के साथ साथ पर्याय शक्ति, यानी पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, द्रव्य शक्ति को छोड़ना नहीं है, उसी द्रव्य में विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय होने की योग्यता है। वो योग्यता वाली जो पर्याय शक्ति है, यानी वो द्रव्य शक्ति के साथ पर्याय शक्ति को भी लेना, साथ साथ दोनों तभी कार्य होगा। तो अकेले नित्य शक्ति को मानेंगे तो कार्य नित्य बना रहेगा, हर समय वही कार्य होना चाहिए था। इसलिए अतः पर्याय शक्ति को ही कार्य का नियामक स्वीकार किया गया, नियामक यानी उसका कंट्रोल। उस समय वही कार्य क्यों होगा, क्योंकि वो ऐसी पर्याय शक्ति है, वो द्रव्य में ही ऐसी पर्याय शक्ति है। एक आगे द्रव्य शक्ति यह बताती है कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा, अन्य द्रव्य में नहीं। समझो गर्म कोई पर्याय हमें दिखी, वर्ष गुण की गर्म, तो ये कार्य कौन से द्रव्य में होगा, उद्गल द्रव्य में है। और ये गर्म होने वाला शरीर है, पुद्गल है। तो द्रव्य शक्ति बताती कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा, अन्य द्रव्य में नहीं। और पर्याय शक्ति यह बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में ही होगा, उसका समय निश्चित कर देती। कार्य कब होगा वो पर्याय शक्ति निश्चित करती। अतः न तो द्रव्य शक्ति महत्वहीन है, यानी द्रव्य शक्ति का कुछ काम नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य में शक्ति होगी तो ही पर्याय में प्रकट होगी, और न पर्याय शक्ति ही, दोनों का ही महत्व है। पर काल की नियामक पर्याय शक्ति ही है, ही लगाएगा काल की नियामक, क्योंकि कब होगा कार्य तो पर्याय शक्ति होगी तब होगा। काल का दूसरा नाम भी पर्याय ही है, यानी पर्याय को काल ऐसा भी कहते हैं, कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल यानी वो पर्याय। यह पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप एवं तत्समय की योग्यता रूप होती है। पर्याय शक्ति में दोनों लिए, पूर्व पर्याय का व्यय और इस समय की योग्यता। इस समय की पर्याय नहीं लिया, इस समय का उत्पाद नहीं लिया, वो तो कार्य है, उसको उत्पन्न किसने किया, पर्याय शक्ति। वो पर्याय शक्ति क्या, पूर्व पर्याय का व्यय और इस समय में उत्पन्न उत्पाद होने की योग्यता, ये दोनों मिलकर पर्याय शक्ति थी। तो पूर्व पर्याय का व्यय नहीं मानेंगे तो पूर्व का कार्य भी चलता है और उत्तर का कार्य भी होगा, ऐसे बलाएगी ना उसमें। तो मिथ्यात्व का व्यय, सम्यक्त्व का उत्पाद, ये कार्य हुआ, यानी सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ, कार्य हुआ, तो उसमें पर्याय शक्ति कौन सी है, मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त्व उत्पन्न होने की योग्यता, ये हुआ कारण, और सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ, ये हुआ कार्य। यह पर्याय शक्ति अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप एवं तत्समय की योग्यता रूप होती है। अतः इन दोनों की ही क्षणिक उपादान संज्ञा है, संज्ञा ने नाम, दोनों को मिलकर क्षणिक उपादान का, क्षणिक उपादान पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय से दो क्षणिक नहीं है, क्षणिक उपादान एक ही है, उसमें दोनों ही है। पूर्व पर्याय का व्यय अकेला पूर्व कहेंगे तो कोई भी दूसरी तिथि चौथी सारे मान्य पड़ेंगे, तो कौन सी पूर्व, इमीडिएट पहले, तो इसलिए उसको कहा अनंतर पूर्व, यानी उसमें बिना अंतर के एक समय पहले ही वाली है, अकेली एक पर्याय लिया, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसका व्यय। और अभी जो हम जिस पर्याय से बात कर रहे हैं वो तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये योग्यता वाला और वो व्यय वाला दोनों मिलकर वो क्षणिक उपादान है, और उसी से कार्य होता है। हम आज तक मानते थे ना निमित्त नहीं आया इसलिए कार्य नहीं हुआ, अभी समझ में आया कि ये जो उस समय की योग्यता और वो पहले का व्यय, ये जो क्षणिक उपादान था, जब जब क्षणिक उपादान होगा तब तब कार्य होगा ही होगा। यदि त्रिकाली उपादान को भी शामिल करके बात करें, अब ये पर्याय शक्ति या क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान एक साथ बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो इस प्रकार कहा जाएगा कि पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है। दोनों को लिया है इसका कारण, दोनों है, त्रिकाली उपादान भी है और क्षणिक उपादान भी है। हमने अकेले क्षणिक उपादान की बात की, अब त्रिकाली के साथ क्षणिक को कहना है तो क्या कहेंगे, पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, उसी से कार्य होगा। ख्याल आया है, तो जितना ख्याल आए तो हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें नहीं समझता तो फिर उसको दौड़ाएंगे। गीता जी जिन्हें पर्याय की शक्ति लेना, अकेले पर्याय तो कार्य हुआ, अनंतर उत्तर पर्याय स्वयं कार्य है। 14वें नंबर की पर्याय ये कार्य है, परंतु 14वें नंबर की पर्याय की योग्यता ये कारण है। सम्यक दर्शन ये तो कार्य है, परंतु सम्यक दर्शन की योग्यता ये कारण है, तो योग्यता वाला, इसलिए उसको हम कहते हैं तत् समय की योग्यता। इतना लंबा 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 बोलने में बहुत कम जाता है ना, तो शॉर्ट में क्या कहते हैं, तत् समय की योग्यता। तत्समय क्या है, तत्समय ने उस समय वही पर्याय हो ऐसी योग्यता, ये पूरा उसमें समझना। नहीं तो तत्समय की योग्यता नहीं, वो काल की योग्यता, काल द्रव्य की योग्यता ऐसा नहीं लेना उसमें, पर्याय की योग्यता, वही पर्याय उसी समय में हो ऐसी योग्यता। तो त्रिकाली और क्षणिक को एक साथ बताना हो तो क्या कहेंगे, पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति। इसका अर्थ ख्याल में आया जी भाई, अकेली द्रव्य शक्ति भी नहीं, अकेली पर्याय शक्ति भी नहीं, दोनों को साथ में लिया तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है। पर इसमें भी नियामक कारण के रूप में तो पर्याय शक्ति रूप क्षणिक उपादान ही रहा, ऐसे हम कहते हैं तो भी उसमें कार्य उसी समय हो इसका कौन निश्चित करता है, पर्याय शक्ति क्षणिक उपादान। यदि निमित्त को भी इसमें शामिल करके बात करनी है, हमको तीनों ही कारण गर्भित करना है। हमने अभी तो क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान को एक साथ किया, तो कहा पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, अभी निमित्त को ही शामिल करना उसके साथ साथ, तो कैसे कहेंगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है, सहकारी कारण सापेक्ष, सहकारी कारण है निमित्त कारण, इसको सहकारी भी कहते हैं। तो सहकारी कारण सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, ये इतना लंबा लंबा सब लिया, निमित्त को भी लिया ना, निमित्त को भी लिया, ये निमित्त को लिया और त्रिकाली उपादान को भी लिया और उस समय की योग्यता को भी लिया, क्षणिक उपादान को भी लिया, तो कैसा कहेंगे, सहकारी कारण सापेक्ष पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति। तो निमित्त लिया, क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान, सबको वो भी बताना है। तो सहकारी कारण सापेक्ष पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, सब आ गए कि कोई रह गया, क्या लगा नहीं आया। देखो निमित्त को भी बताना है, त्रिकाली उपादान को भी बताना है, सहकारी कारण यानी निमित्त कारण, सापेक्ष ने उसकी अपेक्षा सहित, हाँ उसका अर्थ नहीं, तो इसलिए वो कुछ सपोर्ट करती ऐसा नहीं है, नहीं निमित्त के साथ वाला, यानी निमित्त को रखते हुए ऐसा कहो, सापेक्ष ने निमित्त को रखते हुए, यानी यथा योग्य निमित्त के साथ, यानी निमित्त को हमने रखा है तो उड़ा नहीं दिया, ऐसा क्यों रखा, क्योंकि निमित्त होता ही नहीं ऐसा कोई माने तो वो भी खोता। निमित्त का ज्ञान किया जाता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त स्वयं इस पर्याय रूप नहीं हुआ, अपने वो अपना पर्याय रूप हुआ। हम यहाँ समझो, यहाँ स्पर्श गुण की हम बात कर रहे हैं, उसमें उष्णता ये पर्याय हुई, पानी में उस पानी उष्ण रूप परिणमा, तो सामने निमित्त किसको देखा हमने, अग्नि को, अग्नि स्वयं इस पानी की उष्णता रूप नहीं परिणमा, पानी स्वयं ही अपनी उष्णता रूप परिणमित हुआ, सामने अग्नि है, तो हमने कैसा कहा भी, अग्नि सापेक्ष यानी अग्नि की अपेक्षा रखते हुए, हमें रखा है उसको उड़ा नहीं दिया, अग्नि होता ही नहीं ऐसा नहीं कहा हमने, अग्नि होता है परंतु ये पानी स्वयं अपनी योग्यता से ठंडे से गर्म हुआ, अग्नि से ही गर्म होता तो वहां हमने लकड़ी भी रखी थी, वो तो गर्म नहीं हुई, ऐसे होती ना हीट रेजिस्टेंस, जैसे कोई होते तो हम पकड़ते नहीं, तो अभ्रक है, पानी तो गर्म हुआ समझो कोई ईंधन होगा तो वो तो जल जाएगा, परंतु अब रख रखो वहां तो ना गर्म होगा ना जल जाएगा। तो इसको रखा है हमने, पानी गर्म हुआ, कार्य हुआ ना कुछ, पानी ठंडा था वो गर्म हुआ, तो निमित्त को रखते हुए हमने क्या कहा, सहकारी कारण सापेक्ष, मैंने अग्नि की अपेक्षा रख कर, बस अपेक्षा रखा, उसकी उपस्थिति मानी हमने और कुछ नहीं माना। अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया, अग्नि अगर पानी गर्म कर सकता है तो अग्नि के ऊपर पानी डाल दो, क्या हुआ, क्या हुआ, किसके कारण, पानी के कारण। हाँ जैसे अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया वैसे पानी ने भी अग्नि को नहीं बुझाया। तो इसलिए हमने इसकी अपेक्षा रखी, बस इतना है, उपस्थिति हमने मान्य की, अग्नि की उपस्थिति हमने मान्य की। अग्नि की उपस्थिति की कहीं भी इनकार किया जाएगा तो हमारा ज्ञान झूठा हो जाएगा। निमित्त का हम अगर इनकार करते थे, गुरु गुरु से होता ही नहीं चले जाओ, तो हम ज्ञान से इनकार करते थे, वह होता है बस, परंतु उनके कारण से ज्ञान नहीं होता, ये मान्यता हुई, गुरु ने हमारा ज्ञान बढ़ाया ये मान्यता झूठी, और गुरु होता ही नहीं ये ज्ञान झूठा। तो बराबर सब सही समझना चाहिए। तो निमित्त को रखते हुए उसकी उपस्थिति को हमने मान्य किया, बस इतना ही उसका, ये इतना ही उसका सापेक्षता है। तो फिर यहाँ आए पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, हालांकि तो बोले एक एक साथ तीनों को बताना, इसमें क्या है कि कोई भी कार्य होता है तब उसमें दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण। उपादान कारण में भी दो प्रकार है, एक क्षणिक उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो हमने एक वाक्य में ये सारा बता दिया, क्या सहकारी कारण सापेक्ष पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति है कि नहीं, सब आया, ये सब होता है वहां निश्चित होते है देखो। ये बड़े बड़े वाक्य सुनकर या पढ़कर कोई डरने की बात नहीं है, हमने अभी तक जो समझा है ना उन्होंने एक शॉट एक पूरे एक वाक्य में डाल दिया, बस इतना। अब फिर पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएंगे। तो यदि निमित्त को भी इसमें शामिल करके बात करनी है तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहकारी कारण सापेक्ष यानी निमित्त की अपेक्षा रखकर विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त, विशिष्ट क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसी की पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी है, निकली समझते हैं अभी। उक्त संदर्भ में जयपुर तत्व चर्चा में यानी खानिया तत्व चर्चा में, खानिया तत्व चर्चा हुई थी, बहुत सारे भारत भर के विद्वान इकट्ठे हुए थे, और ये जो जो जिन जिन पॉइंट पर विरोध चलता है ना, ये निमित्त से कार्य होता है मानने वाले थे और निमित्त से नहीं होता उपादान से होता है मानने वाले थे, वो पार्टियां थी वहाँ, और वो सारा लिखित रूप से वहाँ चर्चा करी, क्योंकि कोई बैकआउट नहीं करे कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमको ऐसा कहना था, पहले तो विधान कर देते और बाद में क्या कहते, हमारा ऐसा नहीं कहना था, हमारा अर्थ ऐसा था, तो कोई ऐसा पलायन नहीं करे, इसलिए सारा लिखित में हुआ, और उसके नीचे साइंस भी होती थी अपनी अपनी सही करके, वो अपना पॉइंट रखना सामने, फिर सामने वाली पार्टी है वो अपना पॉइंट रखे, इसको भी ऐसे पूरा लिखित देना पड़ता था, ये सारी ऐसी लिखित चर्चा हुई थी, खामिया पत्र चर्चा करते शास्त्रों के आधार दे देते उसका सही अर्थ है। बहुत यानी उसमें वो फुलचंद जी ने अनेक न्याय शास्त्री हुए प्रमाण रखे थे इसमें, ताकि वो तो स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, फिर भी ये स्वामी जी जो सिखाते थे उन्होंने भी वही पॉइंट वहां रखे थे, वो कोई स्वामी जी के शिष्य नहीं थे, स्वयं विद्वान थे फुलचंद जी। उक्त संदर्भ में जयपुर खानिया तत्व चर्चा में सिद्धांत आचार्य पंडित फुलचंद जी ने अनेक न्याय शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करते हुए जो स्पष्टीकरण किया है उसका कतिपय यानी कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है, यानी शास्त्र के उन्होंने दाखले दिए थे, ये शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है। श्री राजवार्तिक ने कहा है, अभी पहले संस्कृत पढ़ती हूँ उसी का हिंदी अर्थ उसके नीचे लिखा, हिंदी पढ़ू जाना है, चलो ठीक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं। जैसे मिट्टी के स्वयं भीतर से घटके होने रूप परिणाम से सम्मुख होने पर क्या कहते हैं, मिट्टी जब अपने ही अंदर से घट रूप परिणमित होने की जब योग्यता उसमें होती है या उसके परिणाम से सम्मुख होती है, आम पकने के परिणाम जो है पकने रूप परिणाम उसके सम्मुख होता है, द्रव्य स्वयं उस पर्याय के परिणमने के सम्मुख होता है। सम्मुख होता है ना, अभी उसकी वो आने वाली पर्याय वही होगी। ऐसे होने पर दंड चक्र और पौरुषेय प्रयत्न आदि निमित्त मात्र होते हैं, यानी मिट्टी में स्वयं की ऐसी पात्रता होती है कि अब वो घट रूप परिणमित हो जाए, तब सामने वो दंड है चक्र है पौरुष है, यानी किसी आदमी का प्रयत्न, तो हम जो कुमार कहते हैं तो कुमार के प्रयत्न ये सारे आदि निमित्त मात्र होते हैं। क्योंकि दंडादि निमित्तों के रहने पर भी ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो निमित्त तो है, दंड है चाक है कुमार है सारे है, परंतु बालुका बहुल मिट्टी का जिसमें बहुत रेत है ऐसी मिट्टी से घड़ा नहीं होता या फिर भी रेत से घड़ा नहीं बनता, तो उसको विशिष्ट मिट्टी ही चाहिए। इसलिए हमारी नजर कहाँ लगे कि वो घड़ा रूप परिणमने की योग्यता जिसमें है, और अभी जो घड़ा रूप परिणम हुई ऐसी मिट्टी भी, वो अकेली मिट्टी तो पड़ी थी उसके पास, कुमार के घर में तो मिट्टी पड़ी थी, वो मिट्टी में जो अभी नेक्स्ट समय में जो घड़े रूप परिणमेगी ऐसी मिट्टी ली, तो इसलिए घड़ा रूप परिणमने के सन्मुख हुई जो मिट्टी है उसको लिया जाए। बालुका बहुल यानी जिसमें बहुत रेती है ऐसी मिट्टी, बहुल यानी अधिकता, बालुका ने वो वालू कहते ना मराठी में बालू रेत रेत, तो जिसमें बहुत रेत है ऐसी मिट्टी का कुंड स्वयं भीतर से घटके होने रूप परिणाम से निरुत्सुक होने के, यानी वो स्वयं निरुत्सुक है, जो रेत वाली मिट्टी है वो घड़ा बनने के लिए निरुत्सुक है, वो नहीं चाहती कि मैं स्वयं घड़ा रूप हो जाऊं, अयोग्य है तो वो निरुत्सुक होने के यानी घट पर्याय रूप परिणमन के सम्मुख न होने के कारण घट नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं वो रेत में घड़े बनने रूप योग्यता ही नहीं है। अतः बाह्य में दंडादि निमित्त सापेक्ष मिट्टी का पिंड ही भीतर घट रूप होने घट होने रूप परिणाम का सानिध्य होने से घट होता है, दंडादि घट नहीं होते, इसलिए दंडादि निमित्त मात्र है। कुमार है दंड है चाक है ये सारे निमित्त मात्र है, वो स्वयं मिट्टी ही घट रूप परिणमने के सन्मुख है, वो होने वाली है, ऐसी योग्यता उसी में पड़ी है इसलिए वो घट रूप परिणमित होती है। यदि उसमें ऐसी योग्यता न हो, समझो वहाँ रेत है तो वो घट रूप परिणमित नहीं होती है, ऐसी इसमें योग्यता ही नहीं। यह प्रेरक निमित्तों की निमित्तता का स्पष्टीकरण है। अभी इससे हमने चर्चा नहीं की उदासीन क्या हो प्रेरक क्या है, परंतु अभी यहाँ पढ़ते बाद में इसकी भी चर्चा आने वाली है। इस दो प्रकार हमने देखे थे, एक प्रेरक और एक उदासीन। कभी कभी आते हैं ना वो गते है धर्मास्तु पायवत, ये उदासीन के लिए कहते हैं, यानी उदासीन निमित्त कैसे है, जैसे गमन करने में धर्मास्तु का द्रव्य है, यानी क्या जी वो तो हमेशा पड़ा है वहां, परंतु जब जब हम गमन करेंगे तो वो धर्मास्थिकाएं वहां निमित्त रूप से है, वो सामने से हमको खींचता हुआ नहीं नजर आता, परंतु जो कोई क्रिया वाला गमन वाला स्वयं द्रव्य जैसे ध्वजा फहरा रही है अभी पद्धे उदय, क्यों वहां हवा का निमित्त दिख रहा है, तो हवा भी स्वयं गमन कर रही है और इसको भी लहराती है फेरा सरफराती, तो हमने क्या लिखा है वो हवा ने किया ना इसलिए गया, तो उसको प्रेरक निमित्त कहते है। तो दोनों ही उदासीन, कोई भी निमित्त कार्य में कुछ करता ही नहीं है, फिर भी उसने हमने दो डिफरेंस किए, एक प्रेरक और उदासीन, इसकी चर्चा बात में आएगी आज। यह प्रेरक निमित्तों की निमित्तता का स्पष्टीकरण है। इस उल्लेख में बहुत ही समर्थ शब्दों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है, न तो सब प्रकार की मिट्टी ही घट का उपादान है और न ही पिंड छाक कोष और कुसुल आदि, ये सारी वो मिट्टी के पर्याय अलग अलग बताए। कुमार ने मिट्टी को गीला किया, पहले उसको पिंड बनाया, फिर उसको थोड़ा ऐसा आकार दिया तो छाक का, फिर अंदर से हाथ डाला और बाहर से हाथ डाला तो कुछ अंदर से पोला हुआ ना, फिर और उसका कुछ बनाया तो इसके सारे नाम है, पिंड, छाछ, कोष और कुसुर। ये घड़े होने की पहली की पर्याय ये था, क्योंकि खाली वो मिट्टी का गोला था, इसमें डायरेक्ट घट तो नहीं बना, बीच में कुछ पर्याय हुई ना उसकी, उसको इसने थोड़ा शेप दिया, फिर उसको ऐसा घड़े रूप जैसा उसका शेप किया, अंदर से हाथ देखे उसको जरा अंदर से पोला किया। तो ये सारी पर्याय के नाम है। तो पिंड, सांस, कोष और कुसुल आदि पर्यायों की अवस्था रूप से परिणत मिट्टी घटका उपादान है, किंतु जो मिट्टी अनंतर समय में घट पर्याय रूप से परिणत होने वाली, मात्र वही मिट्टी घट पर्याय का उपादान है। ये बीच वाले बहुत सारे हमने पर्याय देखे, वो सारी पर्याय को नहीं लेना, इमीडिएट पूर्व की पर्याय लेना। अभी तो हमको वो घड़े जैसे दिख रही है, परंतु अभी तो कुछ बाकी, तो उसने वो लास्ट उसका अंतिम हाथ हम कह देना, आखिर हाथ उसने खींचे दिया और वो घड़ा बन गया। तो ये वो पूर्व वाली पर्याय है, उस रूप जो मिट्टी है, पहले तो मिट्टी तो सूखी मिट्टी थी, फिर वो पिंड रूप मिट्टी हुई, फिर उसके बाद वो छाछ रूप मिट्टी हुई, कोष रूप मिट्टी हुई, कुसुल रूप मिट्टी हुई। परंतु अभी नेक्स्ट अगले समय में जो गदर रूप होगी वही मिट्टी लेना है। तो वह मिट्टी जट पर्याय का उपादान है, यही सत्य राजवार्षिक के उक्त उल्लेख द्वारा स्पष्ट किया गया है। मिट्टी की ऐसी अवस्था से प्राप्त होने पर, यानी जो हम 14वें नंबर और 13वें नंबर देख रहे थे, तो 13वें नंबर की अवस्था प्राप्त होने पर वह नियम से घट का उपादान बनती है। मिट्टी वो पर्याय को उपादान नहीं था, मिट्टी स्वयं जब 13वें, जो हम अभी आंकड़ों में बताएंगे, द्रव्य स्वयं 13वें नंबर के पर्याय पर है, वो द्रव्य स्वयं 13वें नंबर के पर्याय वाला द्रव्य स्वयं अगले समय के पर्याय वाला उसका कारण होगा। द्रव्य को कहा, पर्याय को नहीं। 13वें नंबर के पर्याय को 14वें का कारण नहीं कहा, 13वें नंबर वाली पर्याय वाला द्रव्य 14वें वाले पर्याय का कारण था, क्योंकि द्रव्य 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 तो हमेशा रहेगा। वो कौन सा द्रव्य? द्रव्य तो पहले नंबर के समय भी था, अनादि से था, परंतु अभी कौन सा वाला द्रव्य लेना? 13वीं पर्याय से युक्त द्रव्य 14वीं पर्याय का कारण था, वो पूर्व कारण है। यही कारण है कि तत्वार्थवार्थी के उक्त उल्लेख द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि जब मिट्टी घट पर्याय के परिणमन के सन्मुख होती, सन्मुख कहा, उस पर्याय रूप होती ऐसा नहीं था, उसके सन्मुख यानी उसके एक समय पहले की अवस्था, तब दंड चक्र और पौरुषेय प्रयत्न की निमित्तता स्वीकृत की गई है, अन्य काल में वे निमित्त स्वीकार नहीं किए गए। जब 14वें नंबर की पर्याय हुई, अभी मिट्टी 13वें नंबर पर है, 14वें नंबर पर घड़ा होगा, तो 13वें पर्याय वाली जो युक्त तो वो मिट्टी है और अभी 14वें होने ही वाली है, तब उसको निमित्त रूप से कहा, तो दंड चास कुमार सबको, जब कुमार भोजन कर रहा था तो मिट्टी भी अन्य पर्याय रूप से थी, तो तब उसको निमित्त भी नहीं था, क्योंकि दंड चाक तो सारे पड़े थे वहां, परंतु कब लिया उसको निमित्त में? जब अभी 14वें होने ही वाली पर्याय, उस समय उसको निमित्त था। ये संस्कृत के आगे पढ़ेंगे, क्रमेय कमल मार्कन नाम का जो ग्रंथ है उसने भी इसी को फिर स्पष्ट किया है। और जो यह कहा जाता है कि शक्ति नित्य है कि अनित्य है इत्यादि, तो वहाँ क्या यह द्रव्य शक्ति या पर्याय शक्ति के विषय में प्रश्न है? क्योंकि पदार्थ द्रव्य पर्याय शक्ति स्वरूप होते हैं, उनमें से द्रव्य शक्ति नित्य ही है, क्योंकि द्रव्य अनादि निधन स्वभाव वाला है होता है। पर्याय शक्ति तो अनित्य ही है, क्योंकि पर्याय सादी शांत होती है। यानी यहाँ उस प्रमेय कर्मय मातन में प्रश्न उठाकर फिर उसके उत्तर बैठ दिए कि आप ये जो शक्ति की बात कर रहे हैं, वो शक्ति नित्य शक्ति की बात कर रहे हैं क्या अनित्य शक्ति की? नित्य जो शक्ति है वो तो अनादि से ही है द्रव्य में, और अनित्य शक्ति तो पर्याय 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 वाली, वो तो अनित्य है। तो पर्याय शक्ति तो अनित्य है, क्योंकि वो पर्याय सादी शांत होती है। हाँ, सादी शांत का अर्थ क्या है? तो आदि तो अंत, आदि सहित और अंत सहित, जिसकी शुरू भी है और जो अंत भी है, जिसका उत्पाद भी है और जिसका व्यय भी है, इसको कहते आदि शांत। और अनादि अनंत, अनादि अनंत, जिसका आदि भी नहीं और अनंत अंत भी नहीं, उसको अनादि अनंत कहते हैं। और जिसका शुरुआत होती है, आदि जिसको है, उसको आदि शादी। और शांत यानी स अंत, जिसको शुरुआत भी है और जिसका एंड भी है, उसको क्या कहते हैं, शादी शांत। और कौन से कॉम्बिनेशन आपने पढ़े, अनादि शांत। अनादि शांत क्या होगा, ये तो प्रवाह रूप से कह सकेंगे, संसारी पर्याय अनादि से थी या मिथ्यात्व अनादि से चला आया था और अभी उसको अंत हुआ, उसका तो अंत आया उसका, तो अनादि शांत। और हाँ मिथ्या तो ही कहा ना, मिथ्या दर्शन तो कोई भी। और शादी अनंत तो क्या होगा, हाँ आप बोलो भाई, जो नया निर्माण हुआ परंतु भी अनंत काल में रहने वाला, हाँ मोक्ष होता है, मोक्ष जो पर्याय है, केवल ज्ञान जो है वो कैसा है, सिद्ध पर्याय प्रकृति, वो कब तक टिकने वाली है, अनंत काल का। तो ये हुई शादी अनंत। तो यहाँ शादी शांत की बात, पर्याय क्षणिक होती है और शादी शांत होती है। यदि कहा जाए कि शक्ति नित्य है, इसलिए सहकारी कारणों की अपेक्षा किए बिना ही कार्यकारीपने का प्रसंग आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। जो निमित्त को उड़ा ही देते हैं उसके लिए बात करें कि आप ऐसा कहेंगे कि शक्ति तो नित्य है ही, तो निमित्त कोई होगा ही नहीं, वहाँ निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं होती है और उसके बिना ही कार्य हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि केवल द्रव्य शक्ति का कार्यकारीपना स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कार्य करने में समर्थ होती है, क्योंकि विशिष्ट पर्याय से परिणत द्रव्य का ही कार्यकारीपना प्रतीत होता है। यानी विशिष्ट पर्याय अभी प्रकट हुई तो उस द्रव्य में वो कार्य करने की शक्ति थी, यह बात सिद्ध हुई। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो इस द्रव्य में, इस जीव में सम्यक दर्शन प्रकट होने की जो शक्ति थी उसका हमें अनुभव है ना, यानी उसका कार्यकारी पना सिद्ध हुआ है, वो कार्य करने की योग्यता उसमें थी, ऐसा हमको ख्याल आ गया, ऐसा हमको ज्ञान हुआ, ये सिद्ध हुआ। पानी गर्म हुआ तो पानी में गर्म रूप होने की योग्यता थी, ये हमने जाना। इसी को क्या कहते हैं कि विशिष्ट पर्याय से परिणत द्रव्य का ही कार्यकारीपना प्रतीत होता है, यानी हमने हमारे ख्याल में आता है, हमारे ज्ञान में आता है, और उसकी परिणति सहकारी कारण सापेक्ष होती है। और ये जो पर्याय है उसमें सहकारी कारण की अपेक्षा होती है, यानी उस समय कोई ना कोई निमित्त होता है, निमित्त कुछ नहीं करता, परंतु जब जब वो पर्याय हुई तो सामने निमित्त था या निमित्त होता है, क्योंकि पर्याय शक्ति तभी होती है। इसलिए न तो सर्वदा कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग आता है और न ही सहकारी कारणों की अपेक्षा की व्यर्थता प्राप्त होती है। यानी इससे क्या, हमने तीनों कारण जब निश्चित किए कि सहकारी कारण की अपेक्षा सापेक्ष पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति, अकेले द्रव्य शक्ति को मानते तो कार्य तो हमेशा चलता रहना चाहिए, इसलिए पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति मान लिया, क्योंकि पर्याय प्रकट होने पर ही इसकी शक्ति का हमें एहसास हो जाता है, प्रतीति आती है, परंतु अकेला इसको उड़ा ही देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब जब कार्य होता है तब तब सामने उसका निमित्त भी उपस्थित रहता है, इसलिए तीनों को ही हमको मानना ही पड़ेगा, ये इसकी तीनों की सिद्धि होती है। इस प्रकार यह ज्ञात होने जाने पर कि सहकारी कारण सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारिणी मानी गई है, केवल उदासीन या प्रेरक निमित्तों के बल पर मात्र द्रव्य शक्ति से ही द्रव्य में कार्य नहीं होता। क्या कहते हैं, पर्याय शक्ति को मानेंगे ही नहीं, अकेले उपादान ये त्रिकाली उपादान यानी द्रव्य शक्ति और निमित्त इतने को ही अगर मानेंगे तो ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं थी? मैंने कोई ऐसा कहता नहीं कि कोई प्रेरक निमित्त आया इसलिए हमारा कार्य हुआ। हमारे द्रव्य में तो शक्ति पड़ी थी, निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ, तो हमने क्या नहीं माना? पर्याय शक्ति को नहीं माना। तो क्या कहते, पर्याय शक्ति से जो युक्त होगा वहीं पर वो निमित्त की सापेक्षता ली। तो कहते हैं कि विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त जो द्रव्य शक्ति है वो सहकारी कारण के सापेक्ष ही कार्यकारी होगी। यानी तीनों ही कारणों को लिया, निमित्त को भी लिया, वो पर्याय शक्ति को भी लिया और द्रव्य शक्ति को भी लिया। यानी निमित्त, क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान, ये तीनों को रखा और ये तीनों ही हो गए तो कार्य होगा ही होगा। यानी किसी एक को उड़ा देंगे तो हमारा ज्ञान सही नहीं होगा, हमारी मान्यता भी गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी। यदि द्रव्य शक्ति को बाह्य निमित्तों के बल से कार्यकारी मान लिया जाए तो चने से भी गेहूं की उत्पत्ति होने लगेगी। देखो क्या कहते हैं, हमने गेहूं बो दिए और फिर बाह्य शक्तियों ने निमित्त क्या क्या दिए, वहां पानी भी बराबर डाला, वो हवा प्रकाश सब बराबर था, वो उसने वो खत भी सब यानी जो जो कुछ चीजें डालने की आवश्यक हो सब किया, तो वहां हमने गेहूं बोए थे। तो यदि निमित्त के कारण ही कार्य होना है तो वहां चने की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, जो बीज बोया है उसमें कौन सी योग्यता है? हाँ, गेहूं होने की, उसमें चना होने की योग्यता नहीं है। तो अकेले निमित्तों से ही कार्य होता माने तो उसमें से हम चाहे वो उत्पन्न होना चाहिए था। तो क्या कहते यहाँ देखो, चने से भी गेहूं की उत्पत्ति होने लगे क्योंकि गेहूं स्वयं द्रव्य नहीं है किंतु वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल से ही अगर वो पुद्गल बनना है तो पुद्गल से गेहूं ही क्यों बने, चना क्यों नहीं बने? गेहूं तो कुछ द्रव्य है नहीं है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। तो एक वो पर्याय हटकर यदि निमित्त से ही कार्य होता मानते हैं तो उसमें से चना नाम का भी पुद्गल होना चाहिए था। कहना था ना, जो भी बोते हैं वही फल आएगा कि अन्य कोई आएगा? क्यों? क्योंकि उसमें वही योग्यता है, अन्य होने रूप योग्यता ही उसमें नहीं है। अतः वो गेहूं पर्याय विशिष्ट पुद्गल द्रव्य बाह्य कारण सापेक्ष गेहूं के अंकुरादि कार्य रूप से परिणत होता है। यानी जिसमें गेहूं रूप होने की योग्यता है वह गेहूं रूप ही होगा परंतु उसमें बाह्य कारण की सापेक्षता भी होगी। बाह्य कारण को भी नहीं मानेंगे तो गेहूं के डब्बे में पड़े थे वो भी उत्पन्न होगी कि अंकुर वगैरह फूटेगा वहां? तो वहां बाह्य निमित्त कारणों की भी उपस्थिति होती है। जैसे हमने जमीन में बो दिए फिर उसमें पानी डाला, ये मिट्टी पानी आदि जो सूर्य प्रकाश ये सारे जो अपेक्षा उसकी अपेक्षा रखकर गेहूं में से गेहूं के ही अंकुर फूटेंगे, वो चने के नहीं होंगे। आम का हम वो बो देंगे तो उसमें से आम का ही पेड़ आएगा और इमली का उसमें क्या आएगा, आम का पेड़। तो उसमें जो फूल पत्ते सारे वो उसके अपने जैसे होंगे, अन्य जैसे नहीं। यदि विशिष्ट पर्याय रहित द्रव्य सामान्य से निमित्तों के बल पर गेहूं के अंकुर आदि पर्याय की उत्पत्ति मान ली जाए तो जो पुद्गल चना रूप है वे पुद्गल होने से उनसे भी गेहूं रूप पर्याय की उत्पत्ति होने लगेगी। ये वो भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है और बाह्य निमित्तों से ही यदि बनता है तो बाह्य निमित्त हमने इच्छा की चलो अभी इसमें से गेहूं बन जाए तो चने बो दे और गेहूं उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो विविध लौकिक प्रमाण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि जब जैसे प्रबल निमित्त मिलते हैं तब द्रव्यों को निमित्तों के अनुसार परिणमना ही पड़ता है। देखे ना, हम जैसा मानेंगे सोचेंगे वैसा कर दिखाएंगे, तो कर दिखाएंगे तो चने में से गेहूं उत्पन्न कर दो, तुमने उसमें योग्यता नहीं। अरे आप तो कर दिखाने वाले थे ना, तो अपनी मान्यता क्या है? जैसा निमित्त होगा बहुत बलवान होगा, बहुत ऐसा जोर वाला होगा तो उसमें कार्य में परिवर्तन करा के दिखाएगा। तो योग्यता के बिना कोई कार्य नहीं होता वहाँ। तब द्रव्यों को निमित्तों के अनुसार परिणाम नहीं पड़ता है तो यह कथन आगमानुकूल न होने से, यानी आगम के अनुकूल न होने से, कौन सा कथन कि निमित्तों के कारण द्रव्य को वैसा परिणाम न ही पड़ता है, यह कथन आगम के विरुद्ध है। क्यों? भगवान सामने से आए तो हमको सम्य दर्शन होगा ही। अभी तक कोई निमित्त नहीं था इसलिए नहीं हुआ था, कोई निमित्त आए ना इसलिए यहाँ कार्य होगा ही, ऐसा जो मानते हैं वो आगम के विरुद्ध बोलते हैं। तो यह कथन आगमानुकूल न होने से संगत प्रतीत नहीं होता, संगत यानी योग्य नहीं लगता, विसंगत प्रतीत होता है। वास्तव में मुख्य विवाद उपादान का है। विवाद ने वो उपादान के बारे में लोगों को बहुत भ्रांति है। आज तक कोई निमित्तों से ही कार्य होता है ऐसा मानते आए थे। उसका जो समीचीन अर्थ, समीचीन यानी योग्य, यथा योग्य अर्थ, सही अर्थ शास्त्रों में दिया है, उस पर सम्यक दृष्टिपात न करने से दृष्टि हुआ, दृष्टि है दृष्टि है, तो है दृष्टि है तो दृष्टि कहिए, तो कहिए आपने, ठीक है दृष्टि बराबर है। हाँ, मेरे पुस्तक में दृष्टि हुआ है, आपकी इसमें दृष्टि बराबर। इस पर सम्यक दृष्टिपात न करने से ही यह विवाद बना हुआ है, यानी वो उपादान क्या है, निमित्त क्या है, इसकी सही जानकारी नहीं है, किसको निमित्त कहना किसको उपादान कहना, इसके कारण ये सारी भ्रांतियां चलती रहती है। हाँ, उसको योग्य दृष्टि से हम नहीं देखते हैं। हाँ, यानी शास्त्र में तो सही सही बातें लिखी है, जो निमित्त की तरफ से बोलते हैं वो भी शास्त्र के ही आधार देते हैं, और हम उपादान की तरफ बोलेंगे तो भी शास्त्र का ही आधार देते हैं, परंतु जो हम आधार दे रहे हैं उसका सही अर्थ नहीं बताते, उसको सही दृष्टि से नहीं देखते। शास्त्र में तो प्रथमानुयोग में भी ऐसी बातें आती है कि वो जब तक कोई गंधर वहां नहीं था सामने, तो वहां वाणी नहीं थी, तो वहां निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा, तो निमित्ताधीन दृष्टि वाले क्या देखते, देखो जब तक निमित्त नहीं आया कार्य नहीं हुआ ना, और आप कहते हो निमित्त को, आप निमित्त को मानते नहीं, वो आरोप क्या लगाते, आप निमित्त को मानते नहीं, परंतु ये शास्त्र को सही जानने वाले क्या कहते हैं, हम निमित्त को मानते हैं परंतु वो कार्य में कुछ करता ऐसा नहीं मानते, हम निमित्त की उपस्थिति को मानते हैं जो निमित्त होता ही है, परंतु वो कार्य में कुछ गड़बड़ करे, कुछ असर करे, कुछ प्रभाव डाले, कुछ सहकार्य करे, कुछ उसको मदद करे, थोड़ा धक्का दे, ऐसा कुछ नहीं होता। निमित्त की उपस्थिति होती है परंतु कार्य जो होता है वो अपने अपने द्रव्य में अपनी अपनी द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति के होता, निमित्त के कारण नहीं होता। तो निमित्त को निमित्त रूप से जानते हैं मानते, और ये बाकी लोग जो निमित्त को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, वो निमित्त से ही कार्य होता है काम, उसमें ही कर्ता कर्म लगाते, उपादान जैसा मानते हैं, कहने के लिए तो निमित्त कह देते हैं परंतु उसका सारा बिहेवियर जैसे उपादान का है वैसा बता देते, तो उसने ही हमारा कार्य किया, हमारी पर्याय पलटी उसके कारण पलटी ऐसा मानते। कथन तो शास्त्र में आता ना कि जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म की निर्जरा की, देखो यहाँ लिखा है कि नहीं जीव ने की, परंतु जीव ने कभी कर्म में कुछ किया ही नहीं है। जीव द्रव्य अलग है, कर्म नाम का वो पुद्गल द्रव्य अलग है, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में हुई, जीव की पर्याय जीव में हुई, जीव में हुई। जीव जब अपने अंतरंग में लीन था तब कर्म स्वयं अपने कारण से वहां से निर्जरित हो गए, जीव ने उनकी तरफ अरे अपना उपयोग भी नहीं लगाया, करने की तो बात ही छोड़ो, कर्म की तरफ उपयोग लगाता रहेगा, समझो हम यहाँ कर्म के सिद्धांत सीख रहे, तो कर्म की हम बातें कर रहे हैं वो शुद्ध उपयोग है कि शुभ उपयोग है, कर्म की अगर सही जानकारी ले रहे हैं कर्म के बारे में तो शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है वो शुभ उपयोग है, और जब वो शुभोपयोग से कर्म धीरे धीरे होंगे कि नहीं, थोड़े से ज्ञानावरण कर्म तो झड़ जाएंगे कि नहीं, क्या होगा? नहीं होगा। तो कर्म कहे से निर्जरित हो गए, तो चारों का ही लक्ष्य छोड़ दो, शुभ का भी, शास्त्र स्वाध्याय का भी, आत्मा संबंधी विचारों का भी, वो विचार भी शुभोपयोग में आते हैं। आत्मा संबंधी के विचार, आत्मा संबंधी, आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा, ये तो अभी विकल्पात्मक चल रहा है। सारा छोड़कर आत्मा को जानते रहेंगे, कभी इन सारे का उपयोग छूट रहे कि नहीं, तो हो गए शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग में है जी, तब कर्म स्वयं झड़ जाते हैं अधिक मात्रा में। वैसे हर समय आनंद तो ग्रहण करते हैं, आनंद तो निकल जाते हैं, परंतु जब आत्मा में उपयोग लग जाता है तो अधिक मात्रा में असंख्यात गुना कर्म निकलते चले जाते। तो उसमें क्या क्या बनता है वो सारा हमने देखा था, लब्धि चार, सपना चार में सारी चर्चा हुई हमारी। चार आवश्यक अंतरोन्मुख होता है जी, तो ये सारी चीजें बनती अपने आप बनती, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जिसको कर्म संबंधी कुछ ज्ञान नहीं है, उसकी भी निर्जरा होती है आत्म उपयोग करने से, शुद्ध उपयोग करने से। ऐसा जरूरी नहीं कि वो कर्म का सारा सिद्धांत मालूम है उसकी भी निर्जरा होती है और बाकी उनको नहीं होती। हम गोली खाते तो हमारी भी बुखार चल जाता है, और डॉक्टर स्वयं खाता है तो उससे होता है कि नहीं होता? तो बुखार हटाने के लिए सारा जानना जरूरी है क्या? कि नहीं जाने तो भी वो यथायुक्त गोली खाने से बुखार हट जाएगा ना? वैसा ही ऐसा आज के टाइम हो, इसको फिर जरा कल दोहरा के आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सुधे लोकान।